This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
नमस्कार, नमस्ते, सुस्वागतम. घड़ी में बज गए हैं 5 और मैं स्वाति शर्मा SBS हिंदी का दैनिक कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आज यानी शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को मेलबर्न स्टूडियो से. आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईबुरुन लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए. साथ ही हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी आदरपूर्वक सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है. तो दोस्तों, जानते हैं क्या होगा आज के प्रोग्राम में. फटाफट नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम की रूपरेखा पर. सबसे पहले होंगी देश और दुनिया की मुख्य खबरें न्यूज फ्लैश के साथ. फिर जानेंगे स्टूडेंट वीजा में क्या नए बदलाव किए गए हैं हाल ही में जो ये तय करेंगे कि आपका वीजा कितनी देर में आएगा. फिर भारत से जानेंगे आज की ताजा तरीन खबरें. इंडिया रिपोर्ट के साथ एक खास और महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जाने अनजाने में आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं और कैसे उन्हें सावधान रहना चाहिए. आज जानेंगे मेलबर्न के एक अनूठे प्रकार के नए मंदिर के बारे में भी जहां आस्था के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा. फिर मनोरंजन की दुनिया में रखेंगे कदम गीत संगीत के साथ. तो अगर आपके भी कोई गीत की फरमाइश हो तो मुझे अभी भेज सकते हैं 04397997667 पर. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज ही उसे शो में बजा दूं. तो दोस्तों, कैसा चल रहा है आपका वीकेंड के लिए. तैयार हैं, एक्साइटेड होंगे उम्मीद है. मौसम तो बदल ही रहा है तो वो एक नई तरह की एक्साइटमेंट ला रहा है. दोस्तों, आज साल का 332वां दिन है और साल खत्म होने में बचे हैं अब सिर्फ 33 दिन. जी हाँ, बस खत्म हुआ ही समझो. तो आज मेरे पास एक खास सवाल है आपके लिए जो लाई हूं मैं हमारे घर की सबसे जीवंत जगह जो कि है रसोई, उससे जुड़ा हुआ है. इस बात पर मैं बहुत कंफ्लिक्टेड हूं तो मैं जानना चाहती हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं. तो दोस्तों, आपकी रसोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उनकी एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल कर लेते हैं. उदाहरण के तौर पर कुछ मसाले जो जिनकी एक्सपायरी डेट तो मुझे याद नहीं रहती कि डिब्बे पे क्या लिखी थी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर उसकी स्मेल ठीक है तो मतलब ठीक ही होगा. इस बात पर आपका क्या मत है मुझे जरूर बताइए 04397997667 पर मैसेज करके. जब तक आप अपने जवाब भेजते हैं, चलिए जल्दी से एक जायजा लेते हैं आज के मुख्य समाचारों का न्यूज फ्लैश के साथ. नमस्कार, प्रस्तुत हैं शुक्रवार 28 नवंबर 2025 के मुख्य समाचार स्वाति शर्मा के साथ. हांगकांग के दाईपो जिले में 7 अपार्टमेंट टावरों में दूसरे दिन तक जल रही आग को दमकल कर्मियों ने लगभग नियंत्रित कर लिया है. वांग फो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार रात आग लगने के बाद कम से कम 94 लोगों की मृत्यु हो गई है और 200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं. हांगकांग की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने इमारतों पर चल रहे निर्माण कार्य की जांच शुरू कर दी है. प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन के 2 निदेशकों और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट को असुरक्षित सामग्री के उपयोग के संदेह में गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जब यह सामने आया कि हाउसिंग एस्टेट को बांस के मचान और हरे जाल से ढका गया था. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के एक सार्जेंट को एक दुर्घटना के मामले में जिसमें एक एबोरिजिनल किशोर की मृत्यु हुई थी खतरनाक ड्राइविंग से मृत्यु का कारण बनने का दोषी पाया गया है। 16 वर्षीय जय कलानी राइट की अस्पताल में गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई जब उसकी मोटरबाइक की टक्कर सिडनी में एक बिना चिन्हित पुलिस कार से हो गई। पुलिस का आरोप है कि मोटरबाइक और कार दोनों चोरी की थी और टक्कर से पहले पास में पुलिस द्वारा देखी गई थी। पुलिस अधिकारी बेनेडिक्ट ब्रायन के वकील का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। सिडनी के पश्चिम क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक घातक गोलीबारी के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ब्लैकटाउन के कैरिनिया स्ट्रीट पर पहुंची जहां एक व्यक्ति गर्दन, छाती और पैरों में गोली लगने के घावों के साथ मिला। उसे पैरामेडिक्स द्वारा उपचार दिया गया लेकिन मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। दो लोगों को माजदा वाहन में क्षेत्र से भागते हुए देखा गया। पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से प्रतीक्षित एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स बिल लेबर और ग्रीन्स के बीच अंतिम चरण में हुई डील के बाद आज प्रतिनिधि सभा से पारित हो गया है। पर्यावरण कानूनों में एक प्रमुख संशोधन मौजूदा कानूनों में मूल वनों को कटाई से बचाने का प्रावधान है जिसके कारण उच्च जोखिम वाले वन क्षेत्रों में कानूनी रूप से लॉगिंग की जा रही थी। विपक्ष की नेता सुजन ली कहती हैं कि यह बिल ऊर्जा की कीमतें बढ़ाएगा और आरोप लगाती हैं कि लेबर जीवन यापन की लागत को और खराब कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस हफ्ते को जारी किए गए अपेक्षा से अधिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद रिजर्व बैंक अब दरों में कटौती करने की तुलना में उन्हें बढ़ाने की अधिक संभावना रखता है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुलासा किया कि अक्टूबर तक 12 महीनों में उपभोक्ता कीमतें 3.8% बढ़ी, जो अपेक्षा से अधिक है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि बढ़ती मुद्रास्फीति संकेत देती है कि कैश रेट अर्थव्यवस्था को धीमा नहीं कर रही है और कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि रिजर्व बैंक 2026 में दरें बढ़ा सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर निकासी की गई है जिसमें श्रीलंका ने गुरुवार से शुक्रवार की रात में 40 मौतों की सूचना दी है। देश ने भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में अपनी ट्रेन सेवा रोक दी है और सड़कों को बंद कर दिया है जहां भूस्खलन हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बुधवार को वाशिंगटन डीसी में गोली लगने वाले दो नेशनल गार्ड सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 20 वर्षीय सैरा बैकस्ट्रॉम का निधन हो गया है और उन्हें एक अत्यंत सम्मानित युवा उत्कृष्ट व्यक्ति बताया। मिस बैकस्ट्रॉम और वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के सदस्य एंड्रयू वोल्फ पर व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा घात लगाकर गोली चलाई गई थी। एंड्रयू वोल्फ अब भी अस्पताल में गंभीर स्थिति में है। वहीं रुक करें भारत की खबरों का, तो भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए संसद के अगले सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक को पेश किए जाने की तैयारी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के मौके पर भी इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इससे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, उन्नत रिएक्टरों और परमाणु नवाचार में अवसर पैदा होंगे और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व को नई ताकत देगा। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ, हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद बारी है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। ऑस्ट्रेलिया में अगले साल की पढ़ाई की योजना बनाने वालों के लिए एक बहुत अहम बदलाव किया गया है। इस अगले अंश में हम जानेंगे कि हाल ही में स्टूडेंट वीजा की प्रोसेसिंग में कौन सा नया नियम आया है। अब आपके वीजा को कितनी जल्दी मंजूरी मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ना कि आप पर। इसे विस्तार से समझने के लिए आइए सुनते हैं यह रिपोर्ट। नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूं स्वाति शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की योजना बनाने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट वीजा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 14 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 115 लागू किया है जो मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 111 की जगह ले रहा है। ये डायरेक्शन यह तय करेगा कि आपका स्टूडेंट वीजा कितनी जल्दी प्रोसेस होगा, यानी आपका वीजा एक हफ्ते में भी आ सकता है या फिर 12 हफ्ते तक लग सकते हैं और यह सब निर्भर करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पर, आप पर नहीं। तो आखिर ये बदलाव क्यों लाया जा रहा है? सरकार ने 2025 के लिए 2,70,000 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का कैप रखा है और यह कैप 2026 के लिए 2,95,000 है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय, खासकर प्राइवेट कॉलेज, इन सीमाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट कॉलेजेस को 31,000 स्थान मिले थे, लेकिन उन्होंने 48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को भर्ती किया, यानी निर्धारित सीमा से लगभग 60% ज्यादा। यह प्रायोरिटी सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज के लिए एक जुर्माना है।
इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मैंने बात की रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट वैभव पटेल से। वैभव, SBS हिंदी पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सरल भाषा में समझा सकते हैं कि मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 115 का मतलब क्या है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं?
तो बेसिकली मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 115 जो रिप्लेस कर रही है मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 111 को, उसमें बेसिकली ये है कि अभी गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा मोर स्ट्रक्चर दे दिया है बेसिकली, और इसमें 3 प्रायोरिटी सेक्शंस हैं, जिसमें पहला प्रायोरिटी है जो स्टूडेंट्स बेसिकली रिसर्च के लिए आ रहे हैं, एलिकोर्स के लिए आ रहे हैं, स्कूल के अंदर है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट फंडेड है जैसे फॉरेन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर है, डिफेंस स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स है, इन सबको प्रायोरिटी 1 मिलेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली जो मतलब ज्यादातर लोग इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं वो जनरली स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज है क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा प्रोसेसिंग में। फिर एलिको स्टूडेंट्स है बट वो बहुत कम आते हैं, तो उनको ज्यादा आई डोंट थिंक वो हमारे लिए इतना मैटर करता है। टेफ में डेफिनेटली बहुत स्टूडेंट्स आते होंगे, रिसर्च स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, उन सबको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरी चीज लग से जो सब्सिक्वेंट एंट्रेंस एप्लीकेशन है जो डिपेंडेंट स्टूडेंट के जो डिपेंडेंट होते हैं, उसमें माइनर जो चाइल्ड है अंडर 18 उसको भी प्रायोरिटी 1 में रखा गया है। मतलब इसमें यह कि आपकी एप्लीकेशन 1-4 वीक्स में प्रोसेस हो जाएगी। प्रायोरिटी 2 में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में एडमिशन लिया है, जिनके प्रोवाइडर्स के पास अभी भी उनका जो एक अलोकेशन है कॉल्ड NOSC न्यू ओवरसीज स्टूडेंट कमेंसमेंट अलोकेशन, वो जब तक उनके पास है वो एक्सीड नहीं हो रहा है तो उसके अंदर होंगे तो उनको प्रायोरिटी 2 मिलेगा। और सबसिक्वेंट एंट्रेंट विदाउट अ माइनर, मतलब कि जैसे आपके अगर प्राइमरी एप्लीकेंट मेल है तो उसकी वाइफ का अगर डिपेंडेंट डाल रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी 2 मिलेगा। मतलब आपको पता है कि आपका वीजा का आउटकम 5-8 वीक्स में आ जाएगा। और बाकी लोएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू प्रायोरिटी 3 विच इज हायर एजुकेशन एंड मेट एजुकेशन स्टूडेंट्स, जिनके प्रोवाइडर ने अपना थ्रेशोल्ड एक्सिट कर दिया है, जो उनको NOSC अलोकेशन है वो एक्सिट कर चुके हैं बाय 15%, उनको प्रायोरिटी 3 में रखा गया। उनको एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर स्टूडेंट वीजा विल बी 9-12 वीक्स। अभी इसमें इंपॉर्टेंट नोट चीज करने वाली बात यह है कि इससे आपका वीजा का आउटकम चेंज नहीं होगा। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते कि चलो हमारा वीजा अप्रूव हो जाएगा, नहीं। हाँ, वैसे भी अगर जैसे इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में है अभी तो वैसे भी अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन से आपका प्रायोरिटी प्रोसेसिंग चेंज होता है, मतलब आपका प्रोसेसिंग टाइम चेंज हो रहा है, नॉट द आउटकम। एक तो कि कॉलेज के पास कितने NOSC के एलोकेशंस हैं, और दूसरा कि आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो। जैसे मैंने बताया कि स्कूल सेक्टर है तो उनको प्रायोरिटी 1 डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट है। टेफ के साथ जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट है। आप रिसर्च में किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपके पास प्रायोरिटी 1 है।
तो जो विद्यार्थी अभी अप्लाई कर रहे हैं वो ये चीज कैसे पता कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले कि उनकी उनका स्कूल या उनकी यूनिवर्सिटी या उनकी टेफ किस प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं?
हायर एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो वेबसाइट है उसके उनके ऊपर उन्होंने वैसे एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। बट वोकेशनल एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट ने क्लियरली बोला है कि यू हैव टू चेक विथ योर एजुकेशन प्रोवाइडर, मतलब कि आप अपने जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उनको आप पूछोगे, वो बता देंगे, उनको पता होता है
कि उनके पास कितनी जगहें बची हैं।
हाँ जी,
तो आपकी सलाह वैभव उन लोगों के लिए क्या होगी जो अभी अप्लाई कर रहे हैं ताकि उनका प्रोसेस स्मूथ हो और आसानी से वो अप्लाई कर सके, ताकि क्लैरिटी उन्हें पहले मिल जाए?
देखिए, हम ये प्रायोरिटी प्रोसेसिंग हो या ना हो, हमारा रिकमेंडेशन यही होता है कि आप जल्द से जल्द स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपका COE आ जाता है, मतलब कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो होता है आपका, एज सून एज आपको वो मिल जाता है आप तुरंत स्टूडेंट वीजा डाल दीजिए, चाहे आप कौन सी भी प्रोसेसिंग प्रायोरिटी में हो।
जी,
ठीक है। पर इसमें अगर आप अच्छे से प्लान करना चाहते हो, क्योंकि ये साइकिल शुरू होता है 15 नवंबर से 14 नवंबर नेक्स्ट ईयर तक, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नए साल के अंदर, मतलब जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो उनका लाइकली चांसेस है कि वो प्रायोरिटी जो उनके कॉलेज के पास होगी वो अलोकेशन अभी यूज नहीं हुई होगी, राइट, क्योंकि अभी रीसेट हुई है। तो वो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हो तो आपको ज्यादा एडवांटेज रहेगा उसका। दूसरी चीज है कि आप जब एडमिशन ले रहे हो तो ऑब्वियसली पहले तो आपको अपना व्हाटएवर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और एजुकेशन प्रोवाइडर आप चूज कर रहे हो उसके साथ आप वेरीफाई कर लो कि उनका लेवल क्या है, नंबर 1। असेसमेंट लेवल भी होता है
जी।
आपकी कंट्री का असेसमेंट लेवल ऑब्वियसली इंडिया का जैसे मैंने बताया 2 है, तो इंडिया का असेसमेंट लेवल 2 है। अगर वो कोई भी स्टूडेंट जो असेसमेंट लेवल 2 वाली यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जा रहा है तो उसका वीजा अप्रूवल चांसेस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि आप असेसमेंट लेवल 2 से 2 में ही जा रहे हो। अगर लेट्स से सेम बंदा असेसमेंट लेवल 3 वाली कॉलेज चूज करता है उसके क्राइटेरिया भी बढ़ जाते हैं। जैसे 2 में जा रहे हो, 2 से 2 में जा रहे हो तो आपको फंड्स का रिक्वायरमेंट नहीं शो करना है, इंग्लिश में भी बहुत सारा मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको सब में राइट। जबकि अगर असेसमेंट लेवल 3 है कंपलसरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे
जी।
ये सारी चीजें होती है। वैसे तो यूनिवर्सिटीज फिर भी ऑफशोर से जब स्टूडेंट वीजा डाल रहे हो तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वैसे भी यूनिवर्सिटी चेक करती है, बट फिर भी आपको एग्जेम्पशन होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि असेसमेंट लेवल 2 वाली यूनिवर्सिटीज अगर हो सकता है तो उनको चूज करिए
जी।
और अगर आपके कोर्सेज उधर अवेलेबल है तो राइट। और दूसरी चीज एज आई सेड कि भाई आप ट्राई करिए कि सेमेस्टर 1 में जाएं, तो उससे भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर आपका कोई भी प्रोवाइडर है उसका एलोकेशन यूज नहीं हुआ होगा बाय दैट टाइम
जी। वैभव, हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सरल शब्दों में अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपने सभी आवंटित स्थान यानी एलोकेटेड स्टूडेंट प्लेसेस नहीं भरे हैं तो आपका वीजा सिर्फ 1 से 4 हफ्ते में प्रोसेस हो सकता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अपनी आवंटित सीमा के करीब यानी 80 से 115% के बीच है तो आपके वीजा में 5 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अपने आवंटित स्थानों का 115% से ज्यादा भर लिया है, मतलब उन्होंने सरकार की अनुमति से कहीं ज्यादा विद्यार्थियों को दाखिला दे दिया है, तो आपका वीजा स्लो लेन में चला जाता है जिसमें लग सकते हैं 9 से 12 हफ्ते। अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि यह बदलाव जरूरी है। असिस्टेंट मिनिस्टर जूलियन हिल ने कहा है कि 2025 में मैनेज्ड ग्रोथ अप्रोच का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। स्टूडेंट लॉजमेंट्स में 26% और कमेंसमेंट्स में 16% की कमी आई है। सरकार का कहना है कि यह उन विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत करने के लिए है जो नियमों का पालन करते हैं और जो नहीं करते हैं उन्हें दंडित करने के लिए। तो नया मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 115 लागू हो चुका है। सरकार इसे सस्टेनेबल और इक्विटेबल सिस्टम बनाने के लिए जरूरी बता रही है। विश्वविद्यालयों और शिक्षा प्रदाताओं के लिए जानकारी सत्र यानी इन्फॉर्मेशन सेशन पूरे नवंबर और दिसंबर में आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन हजारों विद्यार्थियों के लिए इसका मतलब है ज्यादा लंबा इंतजार और ज्यादा अनिश्चितता। SBS हिंदी के लिए मैं हूँ स्वाति शर्मा, धन्यवाद। इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है, इसे अपने लिए विशेषज्ञ सलाह ना समझें। अपने मामले पर सटीक जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। तो दोस्तों, इन खबरों के बाद अब समय हो गया है पहले अंतराल पर जाने का, पर उससे पहले आज का सवाल कि आपकी रसोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उनकी एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर है 04397997667। बस मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप भेजिए मुझे अपने जवाब।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS हिंदी पर, मैं हूँ स्वाति शर्मा। खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हुए आइए अब भारत से आज की ताजा खबरों का जायजा लेते हैं, जिसे लेकर आ रहे हैं विश्वरत्न श्रीवास्तव।
भारत और इंडोनेशिया ने स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को दोहराया है। गुरुवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। अपने इंडोनेशियाई समकक्ष सजाफ्री सजाम सोएद्दीन का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू हियर एंड वेलकम यू टू इंडिया फॉर दिस थर्ड इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। इंडिया एंड इंडोनेशिया share civilizational ties which go back thousands of years.
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी। राजनाथ सिंह इस बारे में बताते हैं।
वी शेयर मेनी कॉमनलिटीज दैट हेल्प ले द फाउंडेशन ऑफ सस्टेन्ड डिफेंस ट्रेड कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन इन रिसेंट टाइम्स द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन अवर कंट्रीज इज कैरेक्टराइज बाई growing cooperation in bilateral and multilateral arena, including frequent high-level interactions. Both India and Indonesia adopted shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific between India and Indonesia.
भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह सरकार विरोधी विमर्श खड़ा करने के लिए विदेशी डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हाल ही में लोकेशन फीचर पेश किया है। इसी का हवाला देते हुए भाजपा ने कांग्रेस और उसके समर्थकों पर आरोप लगाए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इस बारे में कहते हैं,
कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए।
संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस से जुड़े अकाउंट विदेशों से संचालित हो रहे हैं।
पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट, दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था, चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है।
भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शनेत कहती हैं,
ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्परली, उस पर हो सकता है। और अब मैं BJP के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा से जुड़े अकाउंट का उदाहरण देते हुए सुप्रिया शनेत ने कहा,
और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, BJP गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? DD News का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्रीश्री, उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ DP पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और, राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है।
मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर चलाए जा रहे SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। पिछले 20 दिनों में 26 BLO की मौत हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग और भाजपा को घेरा है। कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर लगातार गलत तरीके से जनमत को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल के अलावा असम में भी यह मुद्दा गर्माने लगा है। विधानसभा चुनाव के पहले बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कराने का आरोप कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लगाया।
बस लोड्स एंड ट्रेन लोड्स ऑफ BJP वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स इनटू असम एंड गेट देयर नेम्स इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट।
बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक असम विधानसभा से पारित हो गया है। इस विधेयक में एक से अधिक शादी को अपराध माना गया है। ऐसा करने वालों को अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी और निकाय चुनाव के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति और कुछ अन्य लोगों को छूट दी गई है। असम भाजपा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा,
नारी शक्ति को न्याय देने के लिए ये विधेयक बहुत ही एक प्रभावी विधेयक साबित होगा और जो हमारा समाज में जो एक सामाजिक व्याधि के रूप में ये पॉलीगैमी बहुविवाह जो प्रथा चल रहा है उसको भी समाप्त करेगा।
सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में कांग्रेस के नेता देवव्रत सेकिया कहते हैं,
When the BNSS has a provision for banning polygamy, it was not necessary at the moment to bring this bill. But as our Chief Minister is very keen to polarize the people, so he has decided to do it. And in majority, what we can do, we can only object.
और अंत में चर्चा शेयर बाजार की। गुरुवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गए। आज कारोबार की शुरुआत भी हल्की बढ़त के साथ हुई है। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही एक दायरे में काम कर रहे हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी बैंक अकाउंट और पहचान से जुड़ी हुई जानकारी अपराधियों को ना बेचने की कड़ी चेतावनी जारी की गई है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने कहा है कि छात्रों को फटाफट पैसे का लालच दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से उनका नाम अपराध नेटवर्क से हमेशा के लिए जुड़ सकता है। आइए, क्या है पूरा ये मामला, सुनते हैं इति दीवान की इस रिपोर्ट में।
हमजा सऊदी अरेबिया से 2022 के अंत में ऑस्ट्रेलिया आए थे और अब अपनी डिग्री पूरी करने वाले हैं। 23 वर्षीय हमजा कहते हैं कि उन्होंने अब तक अपने आप को इतने स्कैम से बचाया है कि वो इसकी गिनती तक भूल गए हैं। कुछ महीने पहले उन्हें एक संदिग्ध फोन कॉल भी आया था।
They were talking about a discount for bed mattresses and I told them what's the company name. They won't give me the company name. They're just like Just send your bank account details, and then we'll deliver the mattress to you. I kind of knew it was a scam.
ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस का कहना है कि वो देख रही है कि अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने बैंक और पहचान संबंधी दस्तावेज बेचने के लिए कहा जा रहा है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट मैरी एंडरसन ने यूनिवर्सिटी पूरी कर ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे छात्रों के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है।
They're offering quick cash. Then these assets are used for laundering proceeds of crime, cybercrime attacks. They're also deceiving victims into trusting fake identities.
सुपरिटेंडेंट कहती है कि अपराधी गिरोह खुद को वैध यानी लीगल दिखाते हैं और छात्रों को उनकी ऑस्ट्रेलियाई बैंक अकाउंट सुविधा के बदले सैकड़ों डॉलर ऑफर करते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी आईडी जैसे पहचान पत्रों का इस्तेमाल पीड़ितों के नाम पर नए बैंक अकाउंट खोलने में भी किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वे कई स्कैम नेटवर्क्स का स्रोत छात्र अकाउंट तक ट्रेस कर रही है और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई कर रही है।
They could be facing criminal charges for money laundering or fraud. This could be a consequence of visa refusal or cancellation, permanent bans from entering or re-entering Australia.
Corporate lawyer Sharad Malik ka kehna hai ki aap apne niji dastavezon ke liye puri tarah zimmedar hote hain. और अगर इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी गलत या गैर कानूनी गतिविधि में होता है तो उसके लिए आपको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
इतनी हाल ही में काफी ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडिया वापस जा रहे हैं, उन्हें अप्रोच किया गया है बाय स्कैमर्स टू सेल देयर ऑस्ट्रेलियन आईडीज। ये बात समझनी जरूरी है कि आपकी ऑस्ट्रेलियन आईडी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहें या ना रहें, यू रिमेन लायबल फॉर एनी इलीगल एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन यूजिंग योर आईडी। अगर आपकी आईडी के थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो सबसे बड़ा रिस्क आपका है और इन डॉक्यूमेंट्स को बेचने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है।
शरद कहते हैं कि अगर आपने अपनी आइडेंटिटी किसी को दे दी है तो प्राइवेसी लॉ के तहत ये एक बड़ा जुर्म माना जाता है।
इति जैसा कि आप जानती हैं, डॉक्यूमेंट्स सच एज पासपोर्ट, मेडिकेयर कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स को प्राइवेसी लॉ में पर्सनल इंफॉर्मेशन माना जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स को किसी के साथ भी शेयर करने में एक इनहेरेंट रिस्क है, स्पेशली अगर इन डॉक्यूमेंट्स को ब्लैक मार्केट में या स्कैमर्स को थ्रू अदर मीन्स या डार्क वेब के थ्रू बेचा जा रहा है तो आप अपने आप को काफ़ी मुश्किल में पा सकते हैं और काफ़ी बार आप अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे सीरियस क्राइम्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे क्राइम्स को जनरली देखा गया है कि काफ़ी सीरियसली देखा जाता है इन ऑस्ट्रेलियन लॉ एंड इन सम केसेस हैवी पेनल्टीज, जेल टाइम या स्टूडेंट्स के लिए वीजा कैंसिलेशन जैसे सीरियस रेपोकेशंस भी देखे गए हैं और इन सीरियस केसेस डिपोर्टेशन भी हो सकती है। तो इन क्राइम्स, इन डॉक्यूमेंट्स को बेचने में काफी हाई लीगल रिस्क है।
ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब साल के अंत में छात्र अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहें या वापस घर जाएं। सुपरिटेंडेंट के अनुसार ये समय स्कैम के लिए सबसे जोखिम भरा होता है।
The fact that they're probably leaving to go back home, you know, in a few days' time, it's an opportunity too good to refuse. And the criminals know that, and hence the reason why they're targeting those students. We want to make sure that the international students are being taken out of that formula.
मिश्वीन कौर भारत से आई एक एक्स स्टूडेंट है। वो बताती हैं कि 2021 में उन्होंने एक नकली एटीओ स्कैम में $10,000 गवाए थे।
It's just inhuman. There were a lot of doors that were shut as soon as I said that I was an international student. The only way you're going to come out of it is if you're aware of your rights.
छात्रों को सलाह दी जा रही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। यदि कोई आपके बैंक अकाउंट का उपयोग लोन पर मांगता है तो मना कर दें और किसी भी संदिग्ध ऑफर को तुरंत ठुकरा दें। यदि कोई स्कैम का शिकार हो जाए तो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस का कहना है कि स्कैमर से संपर्क तुरंत बंद करें और उसको रिपोर्ट करें। इसी बीच हमजा की पढ़ाई का एक और सेमेस्टर बाकी है और उन्हें नहीं पता कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो सतर्क रहेंगे।
It's frustrating, like whether I'm departing or just came here, it's still frustrating at the end of the day. You just gotta stay aware, and that's all I have to say.
आखिर में वकील शरद मलिक की छात्रों को साफ चेतावनी।
ये काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है। अगर आपका अकाउंट स्कैम के लिए यूज़ हुआ तो आप पर लीगल केस हो सकता है, वीज़ा रद्द हो सकता है और आपकी एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया पे भी बैन लग सकता है। कोर्ट केसेस, लीगल फीस और स्ट्रेस जो इन चीज़ों के साथ आता है वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है फॉर स्टूडेंट्स। एंड मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से आपके लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा दैट इफ़ अ डील साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज़, and that one should stay away from it.
SBS News से यूसुप सऊदी और डेबरा ग्रोआक और SBS हिंदी से इति दीवान ने आपके लिए प्रस्तुत किया ये अंश।
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों, हमारी किसी भी रिपोर्ट, न्यूज या इंटरव्यू को अगर आप फिर से सुनना चाहते हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी। इस शो को और बेहतर बनाने के लिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर शो पसंद आ रहा है तो वो भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ वक्त हो गया है एक और ब्रेक का और मेरे सवाल के जवाब भी भेजते रहिए। सवाल है कि आपकी रसोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उनकी एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार तो कुछ लोग दूध भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर. अब बेस्ट बिफोर का मतलब है कि उससे पहले इस्तेमाल किया हुआ बेस्ट होगा और उसके बाद भी किया जा सकता है या नहीं. क्या आप भी मेरी तरह स्मेल चेक करके डिसाइड करते हैं कि इसे इस्तेमाल करना है या नहीं? जरूर बताइए अपना मत. नंबर है 0439799767. आप भेजिए अपने जवाब. मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS हिंदी पर. आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ. दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम इति की रिपोर्ट सुन रहे थे जो स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हो रहा है या जो स्टूडेंट्स स्कैम्स का शिकार बन रहे हैं उस पर. तो उस पर हमारे पास एक मैसेज आया है. आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है. आप कहते हैं कि ये जो जानकारी है इसे स्टूडेंट्स के साथ और कम्युनिटी में शेयर करना चाहते हैं आप और आपको ऑन एयर गाइड किया जाए. मैं तो आपको यही कह सकती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को अपने कम्युनिटी में, अपने फेसबुक पेज पर या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं. अधिक जानकारी आपको फेडरल पुलिस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी जिसे आप जो है अपने कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं. उसके अलावा हेमलता पुरोहित जी, आपने मेरे सवाल का जवाब भेजा है. आप कहते हैं कि इंडियन मसाला जो है वो आप कुछ दिन बाद भी यूज़ कर लेते हैं एक्सपायरी डेट के, और कुछ चीज़ें जैसे कि दाल या चना या राजमा भी आप कुछ दिन बाद तक भी यूज़ कर सकते हैं. मसाले की अगर आपको स्मेल ठीक नहीं आ रही है तब आप उसे फेंक देते हैं. बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही करती हूँ. दालों का तो पता ही नहीं लगता कि ख़राब हुई हैं नहीं हुई हैं, या फिर जैसे चने हैं या राजमा हैं, जब तक उनकी स्मेल ना आए या फिर अगर उसमें कीड़ा दिख गया तो मतलब ख़राब हो गए हैं, तब तो उसे फेंक ही दिया जाना चाहिए. पर उसके अलावा मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो मसाले वगैरह, जैसे ख़ास तौर से खड़े मसाले, पता नहीं वो खराब होते हैं या नहीं. आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा. मेलबर्न से ब्रजेश जी, आपका भी मैसेज आया है. SBS वेल विशेस, थैंक यू सो मच. हमारे प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं उसके लिए. तो दोस्तों, अगली जो रिपोर्ट है वो है बहुत खास. मेलबर्न में एक अनूठे प्रकार का मंदिर खुला है जहां आस्था के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा. कई योग शिक्षकों, वासुदेव क्रिया योग वॉलेंटियर्स और समुदाय के सदस्यों के प्रयास से शुरू हुआ ये संस्थान किस तरह से समुदाय के लिए अलग है, आइए जानते हैं प्रीति जबल की इस रिपोर्ट में.
नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जबल. हाल ही में मेलबर्न के ब्रेसाइड में एक अलग तरह के मंदिर की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य केवल भक्ति तक सीमित नहीं है. ये स्थान इस प्रोजेक्ट को साकार करने वाले लोगों के अनुसार एक शांत और सुकून का वातावरण प्रदान करता है जहां लोग योग के जरिए खुद को संतुलित करने और मन को साफ रखने का अवसर पा सकते हैं. योग पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प नहीं है, लेकिन मंदिर के आयोजकों का मानना है कि नियमित साधना औपचारिक सहायता के साथ मिलकर काम कर सकती है और लोगों को स्थिरता और शांति के महत्वपूर्ण पल दे सकती है. उनका विश्वास है कि ऐसे अभ्यास गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को सहारा देने में मददगार हो सकते हैं. मंदिर का उद्घाटन रविवार 23 नवंबर को हुआ. वासुदेवा क्रिया योगा के विद्यार्थी, मंदिर के स्वयंसेवक, आमंत्रित मेहमान और समुदाय के लोग इस अवसर पर शामिल हुए. योग और ध्यान, श्लोक और आरती के संयोजन के साथ इस अनोखे वेलनेस आधारित मंदिर की शुरुआत की गई. हमारी टीम भी वहां मौजूद थी और हमने मंदिर के संस्थापकों, स्वयंसेवकों, मेहमानों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत. VKY यानी कि वासुदेवा क्रिया मंदिर के निर्माण का उद्देश्य बताते हुए वहां के वॉलंटियर दीप्तिमान यादव जी ने कहा,
तो VKY मंदिर का एक उद्देश्य ये है कि हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है और हमारी जो समस्याएं हैं ना, पूरे हमारे बीइंग की, वेल बीइंग की ना, वो एड्रेस हों. और योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी उत्थान होता है. तो ये बहुत बड़ा पर्पस है क्योंकि हम देखते हैं अपने आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, इन सब के कारण छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और माता पिता सभी लोग त्रस्त हैं.
उन्होंने इस यात्रा के दौरान सामने आई चुनौतियों पर बात करते हुए कहा,
इस सफर में चुनौती है सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम निकाल पाना, क्योंकि ये वर्क इज आउट ऑफ योर पैशन. और जैसे ही हमको ये मालूम पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए है, वो जागरण, वो अनुभूति हो पाना बहुत मुश्किल है. हमारे जो कलीग्स हैं ऑफिस में, हम सभी को हम बोलते रहते हैं कि देखिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए आप कुछ करिए। लेकिन लोग बोलते मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम भी बिजी हूँ, और काम जो कर रहा है वो मेरा ही माइंड कर रहा है, मेरी ही बॉडी कर रही है, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो ये काम, ये हमारा प्रोफेशन सभी इम्पैक्ट होगी।
युवाओं को प्रेरित करने और उनसे जुड़ने के तरीकों पर दीप्तिमान यादव जी ने कहा,
मेरे ख्याल से सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम अपने आप से करें घर में और ऑफिस में भी, तो उसका जो मैसेज है वो अपने आप दिखता है, तो वो बच्चों को दिखेगा, पीयर्स को दिखेगा और अपनी टीम में दिखेगा, तो हमारी टीम, कम्युनिटी, सभी का उत्थान होगा। जागरूक होने की बात है, और एज पेरेंट्स और एज जागरूक लोग, जैसे मीडिया का इतना बड़ा रोल है, जैसे आप लोगों का रोल, कि अगर ये मैसेज पहुँच जाए सम हाउ सब लोगों के पास, बच्चों के पास, स्कूलों में, कि जो एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग है और एक नॉट सो हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, दो ही रास्ते हैं और हमको एक चुनना है, और हमारा ही फायदा होने वाला है।
वहीं सुमना राजेंद्र जी ने उद्घाटन के दौरान मधुर संगीत प्रस्तुत किया और योग के फायदों से जुड़े हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए। शुरुआत में सामने आई चुनौतियों पर रोशनी डालते हुए सुमना जी ने कहा,
Yeah, main challenges that we initially faced obviously were, people not coming to yoga, and they, especially Indians, they say, oh, my grandfather used to do, my grandmother used to do. They know the benefits, but we are very busy. And because we are a not-for-profit organization, initially all the money that we get is given to charity. So it was at some point in time quite difficult. Initially, when we start off, we'll have two students, three students.
आमंत्रित मेहमानों में जॉन पेसुटो भी थे, जो विक्टोरियन विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने योग और समुदाय से अपने संबंध पर अपने विचार साझा किए।
Yoga occupies such a special place, not just for the people here today, who many of whom I've known for so many years, and I'm just so proud of them for establishing this center, but it's for the broader community. Yoga has benefits right across our beautiful state and country, and it was a deep spirituality. I remarked about how when I walked into the center, I could feel how spiritual, how strong the faith is, and how also how strong the connection is with the history of yoga and the ancient stories that many of our young practitioners and older as well were able to perform for everybody here today.
वहीं दूसरी ओर ग्लेन वेवली क्षेत्र के प्रतिनिधि एमपी जॉन मलेही ने हिंदी भाषा में हाथ आजमाया और थोड़ा ध्यान भी लगाया।
नमस्कार, मेरा नाम जॉन मलेही है। Well, I'm more peaceful now after the yoga than before. I was a little bit tired and stressed. It's a busy job that I have, but when you spend a little bit of time just relaxing and spending some time with yourself, it's always good and a good investment in oneself to spend some time just thinking about what you're up to, and yoga is a great way to do that.
Shiva Indian Restaurant ke Arun Chauhan ne bataya ki ve Vasudeva Kriya Yoga se 15 साल पहले जुड़े थे। अरुण जी हर दिन योग करते हैं, योग केंद्र में स्वयं सेवा करते हैं और केटरिंग सेवा में भी सहयोग देते हैं।
योगा किसी रिलीजन का या किसी एक जातिवाद का चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ वे ऑफ लिविंग। इट डजन ओनली गिव यू गुड हेल्थ, इट गिव्स यू द पीस ऑफ माइंड, फोकस इन द लाइफ एंड द कंसंट्रेशन। एट माय एज ऑफ 77, इट गिव्स मी द मोबिलिटी, कीप्स माय ऑल द जॉइंट्स फ्लेक्सिबल, एंड आई कैन कीप प्लेइंग माय गोल्फ आल्सो 3 times a week.
एक और हमने 77 साल के स्वयंसेवक अरुण चौहान जी से बात की और दूसरी ओर 11 वर्षीय विद्यार्थी अप्रतिम से भी उनके अनुभव के बारे में सुना।
I've been doing yoga since 6 years and I've seen a lot of improvement throughout. I love this place. Thank you, Guruji. This year I went to Satopant Yatra Badrinath and I was very happy and proud of myself. And few years back, I did a lot of competitions and everything. This year, I participated in the competition and I won 2nd prize in Bhagavad Gita. So I think it's benefited me a lot.
उधर मेलबर्न के डॉक्टर मनीष बसीन के अनुसार योग ने उन्हें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और शांति हासिल करने में मदद की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के दौरान सामने आई चुनौतियों को भी स्पष्ट रूप से बताया।
जो आप समझ सकते हैं कि हमने कोई भी ग्रांट नहीं लिया है किसी से, वी हैव नॉट हैड एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी किया गया है वो कम्युनिटी ने मिलकर किया है, सब लोग आपस में आए हैं, वॉलंटियर्स ने किया है, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टीचर्स ने किया है यहाँ पे, बिकॉज टीचर्स रियलाइज कि वट इज़ इन फॉर द पीपल। नो बडी ड्रॉज एनी सैलरी, VKY میں کوئی بھی سیلری نہیں لیتا ہے. دے آر آل والنٹیئرز, دے گیو دیئر ٹائم, دے گیو دیئر منی, دے گیو دیئر ایفرٹ. آپ ایسا سوچیے کہ دس از اے پلیس ویر یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹریس اباؤٹ اینی تھنگ. یو کم سٹ, یو ول فائنڈ لائک مائنڈیڈ پیپل, یو ول فائنڈ پیپل ود پازیٹیو انرجی, اینڈ جسٹ بائی بینگ ود دیم یو ول فیل لائٹر.
راجیندر جی وی کے آئی مندر کی پریرک شکتی ہیں اور یوگ کے پرتی ان کا جنون اور سمرپن ان کی باتوں میں صاف جھلکتا ہے.
یوگا از مچ بیونڈ واٹ یو سی ان انسٹاگرام. انر کنیکشن, انر انریچمنٹ, اسپرچویلٹی, بھگوت گیتا, اپنیشد, ویدس اینڈ پریکٹس اینڈ تھیوری پٹ ٹوگیدر, وی وانٹ ٹو کنوے دس ون ٹو دی آسٹریلین آڈینس, اینڈ اٹس اے پلیس آف لرننگ. وی وانٹ ٹو میک اٹ ایز اے پلیس آف لرننگ.
بریس سائٹ جیسی لوکیشن کو لے کر راجیندر جی نے کہا,
the expansion, we want to have some backyard, some garden, that type of property. Once we settle this mortgage and everything is created, we want to have some back space where children can come. Aapka swasth sabse important cheez hai, swasth aap rakshan karna. Deh our body is a temporary, isse aage aap jaane ke time mein bhi you should be very proud of what you have done.
अंत में योग की साधना में कम रुचि रखने वाले लोगों के लिए संदेश देते हुए राजेंद्र जी ने कहा,
आपका साथ जो जाता है पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव गुड वर्क यू डू, दैट अकंपनीज यू, नॉट जस्ट द बॉडी. आप इधर आइए, साधन कीजिए, एनरिच योर बीइंग, लिव हैप्पीली एंड लीव हैप्पीली.
यानी कि अच्छे से जियो और जब समय आए तो सहजता से विदा लो. जीवन को संवारने और सरलता से जीने का ये सुंदर संदेश देते हुए हम अपनी रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं. मैं प्रीति जब्बल, SBS हिंदी से.
आप जुड़े हुए हैं SBS हिंदी पर स्वाति शर्मा के साथ. दोस्तों, आपने मेलबर्न के एक अनूठे मंदिर की कहानी सुनी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे जरूर बताइएगा. और मेरा आज का सवाल कि आपकी रसोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उनकी एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बारे में भी अपने जवाब भेजिएगा 04397997767. पर प्रोग्राम के इस आखिरी पड़ाव में कदम रख चुके हैं हम. समय हो चला है मेरे जाने का भी, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि संगीत तो अभी आपके साथ कुछ देर और रहेगा, पर मुझे अभी जाना होगा. जाते जाते मेरे सभी श्रोताओं का धन्यवाद. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा जितना मुझे आपके लिए इसे तैयार करने में आया है. स्पेशल मेंशन उन सभी को जिन्होंने मैसेज किया. एक तो आपने अपना नाम नहीं भेजा, बट हेमलता जी, ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए. दोस्तों, कल फिर हम हाजिर हो जाएंगे इसी समय एक नए प्रोग्राम, नई खबरों के साथ और नए मुद्दों के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाजत. SBS हिंदी पर आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को. शुभ रात्रि.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.